एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। ग्रंथसार में आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में जा रहे हैं जिसने अमेरिकन साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी।
रैल्फ एलिसन का इकलौता प्रकाशित उपन्यास इनविजिबल मैन या अदृश्य आदमी।
बिल्कुल, 1952 में आया ये उपन्यास, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव है, एक आवाज जो आज भी मतलब गूंजती है।
सही कहा। और रैल्फ एलिसन भी, वो महज लेखक नहीं थे, एक विचारक थे, है ना? जैज और ब्लूज संगीत से उनका गहरा नाता था।
हाँ, वो दिखता है उनकी लिखाई में, वो लय, वो एक तरह का इम्प्रोवाइजेशन साफ झलकता है। और उनका मकसद सिर्फ मतलब नस्ली भेदभाव दिखाना नहीं था।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा था।
हाँ, इंसान होने की जो उलझने हैं, अपनी पहचान खोजना, उस संघर्ष को वो सामने लाना चाहते थे।
बिल्कुल। और ये उपन्यास आया भी ऐसे समय में, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और नागरिक अधिकार आंदोलन अभी बस रफ्तार पकड़ ही रहा था। आते ही इसे पहचान मिली। 1953 का नेशनल बुक अवार्ड जीता इसने। तो आज हम इसी की कहानी, इसके किरदारों का सफर और सबसे जरूरी, ये अदृश्य होने का मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और ये बिल्डुमश्रुमान तो है ही, मतलब एक किरदार के बनने की कहानी, पर ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है।
शुरुआत ही इसकी कमाल की है।
हाँ, वो पहली पंक्ति, मैं एक अदृश्य आदमी हूँ, पाठक एकदम चौंक जाता है।
हाँ, लेकिन वो तुरंत साफ कर देता है, ये कोई हैरी पॉटर वाला गायब होना नहीं है।
नहीं नहीं वो कहता है, मैं अदृश्य हूँ, समझ लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मुझे देखने से इनकार करते हैं।
सामाजिक अनदेखी। समाज आपको एक खाचे में फिट कर देता है, आपकी असलियत देखना ही नहीं चाहता।
बिल्कुल। और ये कथावाचक, जिसका कोई नाम नहीं है उपन्यास में, वो शुरुआत में काफी भोला है।
हाँ, दक्षिणी अमेरिका का एक होनार अश्वेत लड़का, अमेरिकी सपने में यकीन रखता है कि मेहनत करो, विनम्र रहो तो सफल होगे।
लेकिन उसके दादाजी की वो बात, मरते वक्त जो उन्होंने कहा था, वो उसे हमेशा परेशान करती है।
हाँ, वो अजीब सी सलाह, उन्हें हाँ कहकर जीतो, उन्हें अपनी मुस्कुराहट से खत्म कर दो।
हाँ, ये विरोधाभास उसके पूरे जीवन में जैसे साथ चलता है।
और उसका ये भोलापन, ये यकीन बहुत जल्दी टूटता है एक बहुत ही क्रूर घटना से।
वो बैटल रॉयल वाला सीन रोंगटे खड़े कर देता है।
हाँ, हाई स्कूल के बाद उसे भाषण देना है शहर के बड़े गोरे लोगों के सामने, पर उससे पहले
मनोरंजन के लिए
उसे और दूसरे अश्वेत लड़कों को आंखों पर पट्टी बांधकर लड़वाते हैं।
और फिर वो बिजली के करंट वाला कालीन जिस पर नकली सोने के सिक्के बिखेरे हैं।
उफ, ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, ये इंसानियत को कुचलना है, जलील करना है।
और मजाक देखिए, इसी हालत में जख्मी उसे अपना भाषण देना पड़ता है विनम्रता और प्रगति पर।
और उसे स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज जाने के लिए। यही तो, ये पूरी घटना एक प्रतीक बन जाती है, कैसे व्यवस्था आपको तोड़ती भी है और फिर इनाम भी देती है आपको अदृश्य रखते हुए।
फिर वो कॉलेज जाता है, उम्मीद लेकर कि शायद ये जगह अलग होगी, अश्वेतों के उत्थान का केंद्र।
लेकिन वहां भी एक अलग किस्म का पाखंड है, दिखावा।
हाँ, कॉलेज का अध्यक्ष डॉक्टर ब्लेडसो, अश्वेत समुदाय के लिए तो वो आदर्श हैं, ताकतवर, कामयाब।
लेकिन असल में,
असल में वो सत्ता के भूखे हैं, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए गोरे संरक्षकों की जी हुजूरी करते हैं, बड़े जोड़ तोड़ वाले इंसान।
और नायक यहाँ एक और गलती कर बैठता है अनजाने में।
हाँ, वो मिस्टर नॉर्टन वाला किस्सा, कॉलेज का एक अमीर सफेद ट्रस्टी।
नायक उसे घुमाने ले जाता है और वो कड़वी सच्चाई दिखा देता है जिसे कॉलेज छिपाना चाहता है। जिम ट्रूबलेट का मामला, वो गोल्डन डे सैलून।
हाँ, जहाँ मानसिक रूप से परेशान पूर्व सैनिक थे, तो ब्लेडसो भड़क जाता है।
बिल्कुल, इल्जाम लगता है कि नायक ने कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसे निकाल दिया जाता है।
लेकिन बड़ी चालाकी से न्यूयॉर्क के लिए सिफारिशी खत देकर कि जाओ वहां नौकरी करना।
ये एक नायक के लिए पहला बड़ा झटका था। ब्लेडसो का वो दोहरा चेहरा, वो धोखा उसे हिला देता है।
वो न्यूयॉर्क पहुंचता है, हार्लेम, नई उम्मीदें लेकर।
लेकिन जल्द ही पता चलता है
कि वो खत सिफारिश के नहीं थे, वो चेतावनी थे कि इस लड़के को वापस कॉलेज मत घुसने देना।
मतलब उसे फिर से अदृश्य बना दिया गया, उसके रास्ते बंद कर दिए गए।
बिल्कुल। इसके बाद उसे एक पेंट फैक्ट्री में काम मिलता है, लिबर्टी पेंट्स।
और वहां वो मशहूर ऑप्टिक वाइट पेंट बनता है। सबसे सफेद पेंट।
हाँ, और यहीं एलिसन एक कमाल का प्रतीक रचते हैं। नायक को पता चलता है कि वो सबसे ज्यादा सफेद पेंट बनाने के लिए
उसमें काले रंग की कुछ बूंदें मिलानी पड़ती हैं।
क्या कहने, मतलब अमेरिकी समाज पर कितनी सीधी टिप्पणी है ये,
है ना? अश्वेतों की जरूरत है, उनके श्रम की जरूरत है, लेकिन उन्हें देखना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है।
उनकी भूमिका जरूरी है पर अनदेखी, अदृश्य।
और यहीं फैक्ट्री में एक धमाका होता है, बॉयलर रूम में। नायक बुरी तरह घायल हो जाता है।
उसे फैक्ट्री के अस्पताल ले जाते हैं, वहां उसका इलाज होता है, कुछ इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी जैसा। बहुत ही अजीब और दर्दनाक अनुभव।
हाँ, ये जैसे उसकी पुरानी पहचान को मिटाने की कोशिश है, एक तरह की प्रतीकात्मक मौत और पुनर्जन्म। वो जैसे खाली होकर बाहर आता है।
अस्पताल से निकलकर वो सड़क पर एक सीन देखता है, एक बुजुर्ग अश्वेत जोड़े को उनके घर से निकाला जा रहा है।
ये अन्याय देखकर उसका उत्साह, जो शायद दबा हुआ था, वो फूट पड़ता है।
हाँ, और वो भीड़ के सामने अचानक एक बहुत ही ताकतवर भाषण देता है। उसकी आवाज में अब कुछ नया है।
और यहीं उसकी जिंदगी में एंट्री होती है ब्रदरहुड की।
हाँ, एक अंतर्जातीय राजनीतिक संगठन, कुछ कुछ कम्युनिस्ट पार्टी जैसा लगता है।
उसका नेता है ब्रदर जैक। वो नायक की भाषण देने की कला को पहचान लेता है
और उसे संगठन में शामिल कर लेता है। नायक को लगता है, चलो अब शायद मुझे मेरी आवाज मिल गई, मेरा मकसद मिल गया।
ब्रदर जैक है तो बड़ा करिश्माई, लेकिन उसकी सोच, मतलब, बड़ी ठंडी और सिर्फ विचारधारा पर टिकी हुई है।
और उसकी वो कांच की आंख,
हाँ, वो एक प्रतीक है, जैसे कि वो इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता, बस अपनी विचारधारा के नजरिए से देखता है।
बिल्कुल। तो ब्रदरहुड नायक को एक नई पहचान देता है, नया नाम, रहने का नया ढंग, और हार्लेम इलाके का मुख्य प्रवक्ता बना देता है।
शुरुआत में तो नायक बहुत जोश से काम करता है, अपनी आवाज से लोगों को उम्मीद देता है, जोड़ता है। उसे लगता है मैं अब अदृश्य नहीं हूं।
लेकिन क्या ये सच है? जल्दी उसे एहसास होने लगता है
कि यहां भी कुछ गड़बड़ है।
हाँ, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है, वो हार्लेम के लोगों से जुड़ने लगता है, और ये बात ब्रदरहुड के नेताओं को पसंद नहीं आती।
उन्हें लगता है कि वो व्यक्तिवादी हो रहा है, संगठन के कंट्रोल से बाहर जा रहा है।
तो उसे हार्लेम से हटाकर दूसरे, मतलब कम जरूरी मुद्दों पर लेक्चर देने भेज दिया जाता है। उसे फिर से एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
और तभी वो टॉड क्लिफ्टन वाली घटना होती है।
हाँ, दुखद,
बहुत दुखद।
हाँ, क्लिफ्टन भी ब्रदरहुड का एक होनहार युवा नेता था, लेकिन वो भी संगठन के इस अमानवीयता से तंग आ गया था।
और वो सड़क पर वो नस्लवादी संभोग गुड़िया बेचते हुए पाया जाता है। क्यों? ये साफ नहीं है। शायद विरोध का एक तरीका या निराशा।
और वही पुलिस उसे गोली मार देती है। उसकी मौत नायक को अंदर तक हिला देती है।
वो क्लिफ्टन के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकालता है। हार्लेम के लोग उमड़ पड़ते हैं,
लेकिन ब्रदरहुड इसे अनुशासनहीनता मानता है। उनके लिए एक व्यक्ति की मौत, लोगों की भावनाएं, ये सब पार्टी लाइन से ज्यादा जरूरी नहीं है।
या नायक को एकदम साफ हो जाता है, ब्रदरहुड ने भी उसे अदृश्य ही बनाया। उसकी इंसानियत की कोई कदर नहीं की, उसे बस इस्तेमाल किया।
इसी समय एक और किरदार है जो कहानी में उभरता है, रास दी एक सॉटर।
हाँ, वो उग्र अश्वेत राष्ट्रवादी जो ब्रदरहुड का दुश्मन है, अलगाववाद और हिंसा की बात करता है।
वो नायक को नस्ल का गद्दार कहता है। वो एक और चरम रास्ता है जिसे नायक अपना नहीं पाता।
तो नायक अब हर तरफ से निराश हो चुका है। उसे लगता है हर कोई उसे अपनी परिभाषा देना चाहता है, उसकी असलियत कोई नहीं जानना चाहता।
हाँ, इसी हताशा और गुस्से के माहौल में हार्लेम में दंगे भड़क जाते हैं। शायद ब्रदरहुड ने ही उकसाए थे।
भाग दौड़ में रास से बचते हुए नायक एक खुले मैनहोल में गिर जाता है,
और वो वहीं भूमिगत रहने का फैसला कर लेता है,
समाज से एकदम कटकर, उस अंधेरे तहखाने में।
ये सिर्फ भागना नहीं है ना?
नहीं, ये सोचने का, समझने का, खुद को फिर से पाने का एक मौका है, एक जरूरी पड़ाव।
वो बिजली चुराकर अपने उस तहखाने को 1369 बल्बों से रोशन करता है।
जैसे अंधेरा में सच की रोशनी ढूंढ रहा हो।
वहां वो अपना ब्रीफकेस जलाता है। उसमें जो भी था, हाई स्कूल डिप्लोमा, सैम्बो गुड़िया, ब्लेड्सो के वो झूठे खत।
हाँ, वो सब पुरानी झूठी पहचाने थी, उनका बोझ उतार फेंकता है। ये एक तरह की मुक्ति है।
और कहानी लगभग वहीं आकर झुकती है जहां से शुरू हुई थी। वो अपने भूमिगत ठिकाने में है, सोच रहा है अपने अनुभवों पर, और शायद तैयारी कर रहा है बाहर आने की, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। अपनी पहचान के साथ।
इस पूरी कहानी में किरदारों में बहुत कुछ सिखाते हैं ना?
बिल्कुल, नायक खुद, उसका सफर देखो, भोलेपन से शुरू होकर आत्मज्ञान तक, वो बाहरी पहचानों को नकार रहा है।
और डॉक्टर ब्लेडसो, सत्ता के लिए कैसे अपने ही लोगों से समझौता किया जाता है, वो पाखंड का प्रतीक है।
हाँ, फिर ब्रदर जैक, कैसे विचारधाराएं अंधी हो सकती हैं, इंसान को बस एक पुर्जा समझ लेती हैं।
और टॉड क्लिफ्टन की कहानी दिल दुखाती है, वो उम्मीद जो टूट गई, व्यवस्था ने जिसे खत्म कर दिया।
राज दी एग्जॉर्टर भी है, वो नस्लीय गुस्से की ताकत दिखाता है, पर उसकी सीमाएं भी, वो भी एक अधूरा सच है।
इन किरदारों के जरिए एलिसन बहुत गहरे विषयों पर बात करते हैं, मुख्य तो वही है, अदृश्यता और पहचान।
हाँ, ये सिर्फ नस्ल का मामला नहीं, ये सवाल है कि समाज आपको कैसे देखता है और आप खुद को कैसे देखते हैं, कौन तय करेगा आपकी पहचान।
और नस्लवाद का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होता है।
हाँ, वो हमेशा एक मुखौटा पहने रहने की मजबूरी, अंदर ही अंदर लड़ते रहना, नायक को हमेशा साबित करना पड़ता है कि वो खतरनाक नहीं है।
उपन्यास ये भी दिखाता है कि बड़ी बड़ी विचारधाराएं, चाहे वो ब्लडसो की पॉलिसी हो या ब्रदरहुड का सिद्धांत या रास का राष्ट्रवाद,
हाँ, वो अक्सर इंसान की जटिलता को नहीं समझ पाती, सब उसे किसी डब्बे में बंद करना चाहते हैं।
अंधापन बनाम दृष्टि का जो थीम है वो भी कमाल है।
बिल्कुल, आंखों पर पट्टी से लेकर जैक की कांच की आंख तक, और अंत में नायक का अंधेरे में रोशनी खोजना, सच को देखने का संघर्ष।
भाषा की ताकत और खतरा भी, नायक की भाषण कला उसे उभारती भी है और फंसाती भी है।
हाँ, एलिसन के लिखने की शैली भी बहुत खास है, पहले पुरुष में है, नायक जैसे हमसे बात कर रहा है, अपने अतीत को समझ रहा है।
और उसमें यथार्थवाद के साथ साथ अति यथार्थवाद भी है, वो बैटल रॉयल, अस्पताल, दंगे वाले सीन किसी बुरे सपने जैसे लगते हैं।
हाँ, वो हकीकत की भयावहता को और बढ़ा देते हैं, और वो जैज का असर, पढ़ने में एक लय महसूस होती है, एक उतार चढ़ाव।
प्रतीक भी बहुत शक्तिशाली हैं, ब्रीफकेस, ऑप्टिक वाइट पेंट, अंधापन और वो भूमिगत छेद।
हाँ, वो छेद चिंतन का, शायद पुनर्जन्म का प्रतीक।
एक लाइन जो मुझे हमेशा याद रहती है, अंत के पास जब वो कहता है, मैं खुद को ढूंढ रहा था और खुद के अलावा सबसे वे सवाल पूछ रहा था जिनका जवाब केवल मैं ही दे सकता था।
यही तो सार है, जवाब अंदर ही है।
ये उपन्यास मतलब भावनात्मक रूप से बहुत झकझोरता है, आप नायक के साथ गुस्सा, निराशा, उलझन सब महसूस करते हैं,
पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में, अपने समाज में किसे अनदेखा कर रहे हैं, किसे अदृश्य बना रहे हैं।
ये आज भी इतना प्रासंगिक इसीलिए है ना, क्योंकि पहचान की खोज, समाज में अपनी जगह बनाना, ये संघर्ष तो चलता ही रहता है।
बिल्कुल, यह हमें सिखाता है कि बाहरी ठप्पों को नकार कर अपनी कहानी खुद कहना, अपनी जटिलता को स्वीकारना कितना जरूरी है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।